गिरिधारी श्याम बनवर मेरो
Hare Krishna, welcome everyone to today's evening's program. So, yesterday I gave the introduction in Hindi, so for the benefit of everyone today, I'd like to speak a few words in Hindi and English. So we are very fortunate to have among us His Divine Grace, Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, from Shri Keshavji Gaudiyamath in Mathura and from Shri Roop Sanatan Gaudiyamath in Vrindavan. He comes in a very exalted Vaishnava Parampara called the Gaudiya Vaishnava Disciplic Succession, which started from Krishna himself and great incarnations like Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in that. About 90 years ago, a great religious leader called Sri Bhakti Siddhanta Saraswati, he established the Gaudiya Math. Gaudiya means those who are followers of God. God is the name for Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he established this society, Gaudiya Math, to spread the message of Chaitanya Mahaprabhu in the entire world. And he had many illustrious disciples. One of them was A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who later on founded the ISKCON Society. Then Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, who was the spiritual master of Sri Narayan Maharaj, and also the sannyas guru of Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaj, from a very young age, he joined the Gaudiya Math, and at the age of, in his early 30s, he accepted the renounced order of life, the sannyas. And since then, he has been preaching widely all over India. And for the first time now, at the request of many, many of us, he has come to the West. He is considered an authority in Vaishnava scripture and is very, very respected among the Vaishnava community. He has authored more than 2 dozen books which are glorified for not only the depth of the philosophy but very touching sentiment, the loving aspect, the spontaneity of devotional life. He's well known for very deep philosophical subject matters. He has the ability to explain them in very, very simple words. And just a couple of days ago, someone commented that when Maharaj was explaining about the pastimes in Vrindavan, he felt as if an expert artist was painting a beautiful picture in front of his eyes. So he has, as I always say, you can never glorify a great Vaishnava in few words. But as Maharaj is speaking, we can see for ourselves. So I request everyone to kindly hear attentively and take his instructions to your heart, because we don't get these opportunities again and again. And we also have Bhagavad Katha at the Gandhi Center from tomorrow till Saturday. You're all kindly invited. It will be Hindi, as will be today's lecture. And I will translate into English afterwards for those who can't understand Hindi. But in the morning, Maharaj is giving lectures in English, so if anyone is interested, they can contact us. But the next lectures will be in English. So thank you once again for coming and joining us. Hare Krishna.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरत्निषे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका संत राधा कंत नमस्तुते सप्त कंचन गौरंगी राधे बिंदावनेश देवी प्रणमामि हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य तम शिष्य गुरुदेव जी के चरणों में नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पास श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि सत्ता युक्त दंडोत्पन्न की ज्ञापन कर रहा हूँ। तत्पश्चात मैंने कल यहाँ पर भगवान साकार हैं या निराकार हैं, सगुण है या निर्गुण है, इसके संबंध में मैंने कुछ युक्तियां बतलाई थी। इसके संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और तब भागवत की कथा में आरंभ करूंगा। एक समय में हम लोग गुरुजी के साथ में कहीं जा रहे थे, मथुरा से कहीं जा रहे थे बंगाल, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में जा रहे थे। रास्ते में एक रेलवे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें उठे चढ़े, तो रेलवे मजिस्ट्रेट चेकिंग कर रहे थे, उनसे गुरु जी की कुछ बातें होने लगी। बातें होने पर उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान हैं, इस विषय में क्या प्रमाण है ये कृष्ण भगवान है? तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि परमानंद। परमानंद बतलाया। उन्होंने गुरु जी ने कहा अच्छा इसका क्या प्रमाण है कि तुम अपने पिता के पुत्र हो? वो तुम्हारे पिताजी वो है परमानंद जी हैं। है कोई प्रमाण? तुम्हारा तब जन्म पीछे हुआ, तुम किसके पुत्र हो ये तुमको कोई कहां से प्रमाण मिला? कहीं लिखा हुआ है न? कहां से तुमने सुना न क्या किया? तुमको तुमने देखा कि तुम दोनों के मिलने से तुम पैदा हुआ? तो नहीं, तो फिर कहां से समझा जैसे ये तुम अपने पिता का ही पुत्र हो? तो मैया ने कहा, मैया के बात पर विश्वास कर लिया, मैया के बात में तुमने विश्वास कर लिया जैसे ये तुम्हारे पिताजी हैं, और इसी के आधार पर तू कहता है कि तुम अपने पिता के पुत्र हो, मेरे पिता का नाम ये है। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैया यदि झूठ बोलती है तो? नहीं, तो मैया झूठ नहीं बोलेगी। तो इसी तरह से समझो वेद उपनिषद शास्त्र ये मां है। मैया झूठ बोल सकती है किंतु वेद नहीं झूठ बोल सकते। संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है और किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, स्वयं भगवान के द्वारा ये लिखा हुआ है। इसलिए समझो, देखो जितने हाड़ हैं अपवित्र होते हैं, हाड़ समझते हैं हड्डी बोन अपवित्र होती है, किंतु शंख तो हाड़ है किंतु पवित्र है वेद कहते हैं। क्यों? प्रत्यक्ष रूप में जब साइंटिस्ट लोग उसको विचार करके देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो देखते हैं नहीं इसमें पवित्रता, पानी रखने से पवित्र हो जाता है। गाय का गोबर ये तो मल है, किसी का भी मल टट्टी पवित्र नहीं होती, किंतु गाय की टट्टी जो होती है गोबर बहुत पवित्र होता है, उसको खाया जा सकता है, लोग पीते हैं उसका मूत्र, पीते हैं स्नान करते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, उससे बहुत सी चीजें हैं, औषधियां हैं जो जड़ी बूटियों में मिल सकती है। किंतु वेद ने कहा इसलिए सभी लोग मानते हैं, और उसको प्रत्यक्ष रूप में जब देखते हैं तुलसी समस्त रोगों की जड़ है ये वेद कहते हैं उपनिषद कहते हैं। गंगा जी का पानी और नदियों, तो नदियों का पानी मैला हो जाता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंगा का पानी ले अमेरिका में एक वर्ष तक रखो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसमें न जाने क्या चीज है, वेद ऐसा कहते हैं। इसलिए वेद की बातों को मानना पड़ता है। वेद मैया से भी अधिक सर्वज्ञ है, वो किसी के द्वारा लिखा नहीं किंतु भगवत तत्व ज्ञान उसको कहते हैं। इसलिए वेद और वेद के अंग श्रीमद भागवत इत्यादि जो वेद का ही सार अंश श्रीमद भागवत है वो परम सत्य है। गीता हम सब लोग मानते हैं, वैसे गीता से भी अधिक उच्च ये श्रीमद भागवत है। गीता पहली पुस्तक है और श्रीमद भागवत ग्रेजुएशन की पुस्तक है या प्रेम की पुस्तक है। जीव मात्र का धर्म प्रेम है, केवल हम मुसलमान हिंदू ये सब तक ही सीमित नहीं है। जीव मात्र एक पेड़, पेड़ हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, क्या है वो भी भगवान का दास, उसके अंदर में आत्मा है। एक गाय ये हिंदू है कि मुसलमान है, मुसलमानों के घर में जाकर के खाती पीती है, दूध देती है ना। हिंदुओं के घर में भी हिंदू लोग उसको मैया कहते हैं, मां कहते हैं, और मुसलमान उनको काट करके खा भी जाते हैं, किंतु बराबर रूप में दूध देती है सबको, सबकी मैया है। उसके अंदर में भी जो आत्मा है वो हिंदू है कि मुसलमान है, नहीं क्रिश्चियन है कि ईसाई है। हमने अभी हॉलैंड में देखा लाखों गायों को, उनके देश का प्रधान धन गायों से ही आता है। वो हिंदू है कि मुसलमान है, नहीं क्रिश्चियन है, क्या है। एक पेड़ है, पौधा, उसमें भी आत्मा। एक सुअर है, उसके अंदर में भी आत्मा है। इसलिए हम लोग सनातनी इसीलिए कहा जाते हैं, हम लोग सनातन हैं, हम लोग वैष्णव हैं, विष्णु के उपासक हैं। हम लोग अच्युत गोत्र के हैं। अच्युत कौन है? कृष्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लोगों ने विचार किया भगवान दो नहीं है, गॉड दो नहीं है, अल्लाह खुदा दो नहीं है, एक ही है। बात तो ठीक है, किंतु होने पर भी कुछ तारतम्य है विचार का। एक मूल कोई फाउंटेन हेड है, इसलिए कृष्ण को श्रीमद् भागवत में बतलाया गया एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान तो नारायण भी है, राम भी है, कल्कि बड़ा सभी भगवान है, सभी भगवान है, गॉड भी भगवान है, अल्लाह भी है, खुदा भी है, ब्रह्म भी है, जगन्नाथ भी है। बात तो ठीक है, किंतु फिर भी उनमें तारतम्य है। चंद्र एक होने पर भी उसकी कलाएं पूर्ण चंद्र नहीं है, किंतु चंद्र ही है। आ रहा है समझ में कुछ? तुम लोग समझती है कुछ? चांद एक होता है ना, मून एक ही मून है, किंतु विभिन्न दिनों में विभिन्न चंद्र के रूप में दिखता है, कभी आधा, कभी चौथाई, कभी कुछ, किंतु है एक ही, दो नहीं है। इसलिए चतुर्थी का चांद पूर्णिमा का चांद नहीं कहा जाएगा, किंतु चांद एक ही है। वैसे ही कृष्ण, राम, नारायण इत्यादि, गॉड या खुदा या और जो भी हो सकते हैं, वो सब एक हैं, किंतु होने पर भी तात्पर्य है। कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। किसने कहा? वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, श्रीमद् भागवत ने कहा, गीता में संघ ने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज कहा। किसने कहा? भागवत ने कहा, गीता ने कहा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, गीता घोषणा करती है। कृष्ण कहते हैं कि मुझसे बढ़कर का और कोई परतत्व नहीं है, हम जी भी उन्हीं के अंदर में हैं, हम उनके अंश हैं, उनके दास हैं। जो लोग भूल जाते हैं हमारे जैसे, ये संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, और किसी प्रकार से यदि उनको फिर से स्मरण किया तो इस दुखपूर्ण संसार से निकल करके सदा आनंदमय संसार में रहेंगे। यहाँ पर जन्म और मरण नहीं है। कृष्ण ही हमारे भैया हैं, वही हमारे पिता भी हैं, वही हमारे प्राण प्रति हैं, वही सब कुछ है। वहां जाकर के रियलाइजेशन होगा। अभी हम जो है ये शरीर को मान रहे हैं, ये गलत है। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग ऐसा ही आया है, व्यास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गीता के कहने वाले लिखने वाले मूल कौन है जानती है बेटियां? गीता रामायण ये तुम लोगों को जानना चाहिए, भारतीयों को जरूर जानना चाहिए। जैसे अंग्रेज लोग बाइबल जानते हैं, मुसलमान लोग कुरान को जानते हैं, हम हिंदुओं को बचपन से ये इसकी शिक्षा देनी चाहिए। ये कोई संकीर्ण धारा नहीं है, संकीर्ण विचार नहीं। व्यास देव जी भगवान के अवतार कहलाते हैं। उन्होंने भारत के जितने भी ग्रंथ हैं मूल ग्रंथों को उन्होंने अपने मन से चिंतन किया और उसको लिखा। ऋग्वेद सामवेद यजुर् अथर्ववेद इत्यादि को उन्होंने चार विभाग किया, एक ही वेद है चार विभाग किया। और उनको समझने के लिए वेदांत सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें 550 सूत्र हैं। सूत्र माने क्या? समरी,
कंडेंस फॉर्म,
वो है सूत्र। जैसे एक है, मैं सब समझा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म किसको कहते हैं? अब उसका उत्तर दिया, जन्माद्यत, जिनसे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, जो हमारी रक्षा करते हैं उसी को कहते हैं ब्रह्म। जिनसे ये जगत पैदा हुआ है और जो सबका भरण पोषण करते हैं और अंत में जिसमें ये सारा विश्व समा जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म। उन्होंने ऐसे बनाया। इसके बाद में महाभारत बनाया। महाभारत का नाम सुना है, कौरव और पांडव में महायुद्ध हुआ, उसमें ऐसे बाण चलाते थे जिससे कि बिजली निकलती थी और लाखों आदमी एटम बम से भी अधिक उसमें शक्ति थी, ऐसा बाण चलाते थे, केवल सांप ही सांप निकलते थे। लोगों को जब काटने लगते थे तो किसी ने ऐसा बाण मारा कि उससे मयूर निकलते और सांपों को खाने लगते। कभी बाण चलाया तो वर्षा होने लगी, आग की वर्षा होने लगी। ऐसा उस समय इंडिया का कल्चर था, किंतु इसको आसुरिक कहते हैं, आसुरिक विज्ञान। इसमें प्रेम नहीं है इसलिए इसको आसुरिक विज्ञान कहा गया। उन लोगों का विज्ञान है सबको प्रेम दो, सबसे प्राणी मात्र से प्रेम करो। तो इसी के पश्चिम में बतला रहा हूं, व्यास जी ने सब ग्रंथ लिखा। महाभारत में गीता भी आ गया, सब ग्रंथों को लिख लिया और जगत उनको जगत गुरु मानने लग गया। एक दिन हिमालय में गंगा के किनारे बैठे हुए थे। हम लोग उस आश्रम में भी गए हैं जहां पर कि व्यास जी की ये बात हुई थी, गंगा के किनारे हरिद्वार में बद्री नारायण के उस पार में, जहां पर बर्फ जमा रहता है, वहां पर गए और जाकर के चिंता कर रहे हैं। मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, इतना लिखा, जगत के लोग हमको गुरु कहते हैं और इतने ग्रंथों को लिखा, इतनी हमारे हमने धार्मिक जगत में प्रचार किया, धर्म की बातों को, गीता के विषय को लिखा, गीता भी लिखा, जिसमें आज जगत में गीता के समान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता, तो संतोष नहीं है, कोई संतोष नहीं। इतने नारद ऋषि वहां पर पहुंच गए। नारद जी कोई मनुष्य नहीं है, ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो उनके गले से निकल गए, स्त्री पुरुष के मिलने से नहीं पैदा हुए हैं। स्वयं ऐसे ही प्रकट हो गए। जितने भी व्यास इत्यादि हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव है, नाम सुना होगा, सबके गुरु हैं कौन? नारद जी। तो वो वहां पर उपस्थित हुए, कहा कि बेटा तुम्हारा कुशल है? व्यास जी से पूछा, कुशल है? तुमने महाभारत लिखा, उसमें गीता का ज्ञान दिया जगत को, तुमने 18 पुराण बनाए, 18 शाखा पुराण और 18
उपपुराण,
उप पुराण, अर्थात 36
54
उन्होंने 54 पुराण बनाए, और आपने वेदों का भी भाग किया और वेदांत सूत्र लिखा जिस पर शंकराचार्य मध्वाचार्य रामानुज बड़े बड़े विद्वानों ने आचार्यों ने इस पर एक्सप्लेनेशन लिखा। जो वेदांत नहीं जानता है वो कुछ नहीं जानता, आचार्य नहीं हो सकता। समस्त वेदों का साथ उसमें वर्णन किया गया, वो भी तुमने लिखा, किंतु तुम्हारा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है बतलाओ तो? क्यों नहीं प्रसन्न? व्यास जी ने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं। रोगी डॉक्टर के पास में जाता है, रोगी ये नहीं बतला सकता जी हमारा क्या रोग है। आप लोग बंगाल में कलकत्ते के जो चीफ मिनिस्टर पहले हो गए हैं डीसी रॉय उनका नाम था, जब से पहले भारत को स्वाधीनता मिली, बड़े भारी डॉक्टर थे बंगाल में, सबसे बड़े बंगाल क्या इंडिया में सबसे बड़े डॉक्टर थे। उनके पास में एक पेशेंट गया, अपने पेशेंट गया और उसका भाई भी गया उनको दिखलाने के लिए। उसके बड़े भैया ने कहा कि हम इनको लेकर के अपने छोटे भाई को ये क्या हो गया है, आप थोड़ा सा देख करके किसको ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा ये रोगी कौन है, तुम है कि वो है? नहीं हमारा छोटा भाई वो रोगी है। नहीं तुम ही रोगी हो, तुम तो देखते हैं कि दो मिनट में तुम समाप्त होने वाला है। और कहते कहते उसको हार्ट फेल हो गया, वो मर गया। तो रोगी अपना रोग निर्णय नहीं करने के कारण जाता है बड़े डॉक्टर के पास में। मैं नहीं समझता कि मुझे क्या हो गया, जी मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही, आप बतलाइए। नारद जी ने कहा ठीक मैं बतलाता हूं जी, क्यों तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है? तुमने दिमाग की चीज दी किंतु हृदय की चीज नहीं दी। दिमाग किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस इत्यादि को, दर्शन शास्त्र इत्यादि तुमने दिया, ज्ञान दिया, किंतु वो रूखा है, उसे काम नहीं चला। हृदय में प्रेम चाहिए, ये चीज तुमने नहीं दिया। कृष्ण की जो बड़ी लुभावनीय मनोहर जो लीलाएं हैं उसका तुमने वर्णन नहीं किया, तुमने ये नहीं लिखा, तुमने गड़बड़ में लोगों को डाल दिया। शंकर का भजन करना चाहिए ये किसी पुराण में लिख दिया, कहीं कहीं ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, कहीं गणेश की पूजा करनी चाहिए, किसी जगह लिख दिया जे दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, किसी जगह आपने लिखा जे राम का, राम ही सबसे उत्तम है, कभी कहा जे कृष्ण बड़े हैं, आपने निर्णय करके ये सब नहीं कहा। और कृष्ण की मनोहारी लीलाओं को आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए कृष्ण यदि संसार का कल्याण चाहते हैं और अपना भी सुखी होने चाहते हैं तो कृष्ण की मधुर लीलाओं का आप वर्णन कीजिए और ये लिखिए ये कृष्ण ही परम तत्व हैं। मैं तो जानता नहीं कैसे लिखूं और कृष्ण की लीलाएं तो मैं जानता नहीं। आज ये भक्ति जो का अवलंबन कीजिए, भक्ति भक्ति माने क्या? कृष्ण को सरेंडर करना है। जिस विषय में अवांग मन सो गोचर, ये जितनी भी चीजें हैं आत्मा इन आंखों से नहीं दिखती, परमात्मा इसके अंदर में है नहीं दिखते, गायों के अंदर में भी बैल के अंदर में भी पेड़ पौधे सबके अंदर में प्रभु हैं, भगवान हैं और आत्मा भी है परमात्मा भी है, दे कैन नॉट रियलाइज। क्यों? अवांग मन सो गोचर, बुद्धि के अंदर से, बुद्धि से नहीं उसको पकड़ सकता। इसलिए उसको ऐसा कहना पड़ेगा मैंने तुम्हारा शरण ग्रहण किया, मैं नहीं आपको जानता, इसलिए सरेंडर करो, अनकंडीशनल सरेंडर अपने को करो। भगवान तो मिलेंगे नहीं पहले, इसलिए गुरु के चरणों में जो कि इस विषय को जानते हैं, जिनको रियलाइजेशन इस विषय का है, जिनको अनुभूति है इस विषय में, उनके पास में जाओ। जिन्होंने भजन किया है भजन के प्रभाव से उनको जाना है, उनके पास में जाओ, रियलाइज सोल के पास में। तब विद्धि परिपाते न परिप्रश्न सेवया, उनको जानने का एक ही उपाय है, जो उनको जानते हैं उनके पास में जाओ। इंजीनियरिंग पढ़ना है कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, वहां पर जहां पर साहित्य का अध्ययन होता है वहां जाने से नहीं होगा। यदि डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल कॉलेज में जाओ, जो चीज पढ़ना चाहते हो उसके स्पेशल कॉलेज में जाओ, और नहीं तो तुम विद्या नहीं लाभ कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि भक्ति योग के द्वारा सबसे पहले अपने को सरेंडर करो, मैं कुछ नहीं जानता, और तब ऐसे गुरु तुमको बतलाएंगे सेवा के द्वारा, वो जो चाहते हैं वैसा करो। चलो एक समय में एक व्यक्ति को थोड़ा सा हारमोनियम सीख लिया, ये बाजा थोड़ा सा सीख लिया, वो गया गुरु के पास में जी हमको और अच्छी शिक्षा दीजिए जो अच्छी तरह से गा सके। उन्होंने कहा $100 एक महीने का मैं लूंगा। एक दूसरा उसी समय में एक लड़का आया, उन्होंने पूछा किस लिए आया, तो हारमोनियम सीखने के लिए, कुछ जानता है तो कुछ नहीं जानता, अभी हाथ रखा तो नहीं, जाओ तुमको $10 में ही तुमको सिखलाएंगे। क्यों, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े मैंने अपने को समझते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूं, वेद शास्त्र के कुछ श्लोक याद कर रखे हैं, उनको सिखलाने में बड़ा भारी कठिन होगा। 60 वर्ष के उम्र में जिनकी हो गई है अधिक उम्र, 60 से ऊपर, उनको कोई कुछ नहीं सिखला सकता, उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। जैसे सूखा हुआ बांस मुड़ता नहीं टूट जाएगा, और कच्चा बांस मुड़ जाता है, बच्चों का हृदय भी सरल होता है, उस पर कख ग कुछ नहीं लिखा गया है, उनको जो देखेंगे वो सीख लेंगे। इसलिए कम उम्र के लोग जिनकी बुद्धि किसी विशेष बात में नहीं गई है वो सहज रूप में इसको समझ सकते हैं, और सब कुछ जो जो जान लिया है उनको, वो ऐसे हैं जग करके सोते हैं, उनको उठाया नहीं जा सकता। एक आदमी सो रहा है उसको उठा देंगे सहज ही, और जो जान पूछ करके सो रहा है आंख बंद करके उसको ऐसे उठाओ वो नहीं उठेगा। इसलिए व्यास जी को उन्होंने कहा भक्ति योग का आश्रय करो, भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, और उनका चित्त से ध्यान लगाओ, लगाने पर भगवान खुद ही आकर के सारी लीलाओं को दिखलाएंगे। बस उन्होंने भक्ति योग अवलंबन किया, नारद जी चले गए और उन्होंने भक्ति योग से देखा, भक्ति योगे नमनति सम्यक पंडिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जदा अपाश्रया जया सम्मोहितो जीवन इत्यादि। उन्होंने देखा क्या, साक्षात रूप में कृष्ण और राधिका जी को और शक्तियों को देखा, ललिता विशाखा सबको, नंद बाबा यशोदा जी को, और ब्रज की जितनी लीलाएं हैं प्रारंभ से सारी लीलाओं को उन्होंने दर्शन किया, जैसे हम सिनेमा या टेलीविजन इत्यादि में देखते हैं सभी लीलाओं को एकदम हाथ पर जैसे रखा जाए ऐसा देखा। और उन्होंने देखा जो लोग भगवान को भूले हुए हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, वो लोग माया में गिर रहे हैं और जन्म के मरण के चक्कर में सुख दुख में फंसे हुए हैं। जब से सृष्टि पहली आरंभ हुई तभी से हम लोग हैं और सुख खोज रहे हैं, कहां सुख है, धन में सुख है तो हम सुखी हो जाते, तो जो बड़े बड़े धनी हैं, सुनते हैं फोर्ड ये जो बनाने वाली मोटर बनाने वाली कोई कंपनी है, बहुत धनी आदमी, हमारे यहां बहुत से लोग धनी हैं, बिरला टाटा इत्यादि लोग बड़े बड़े धनी हैं, किंतु फिर भी वो रुपया किस लिए कमा रहे, उनके बाबा तो मर गए जो पहले थे, जिसके बाद में उनके पिताजी भी मर गए और बूढ़े हो चले हैं, किंतु धर्म की लालसा नहीं जा रही, जब उन्हीं को नहीं सुख मिला तो तुमको मिलेगा, सारा जगत का धन मिला करके एक आदमी को एक मिनट के लिए भी जीवित नहीं रख सकता, ये याद रखे, और जगत का कोई भी चीज साथ नहीं जाएगा, इसको भी अच्छी तरह से याद रखे। इसलिए व्यास जी ने ये देखा कि भगवान को लोग भूले हुए हैं, वो संसार में रच पच रहे हैं, जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम करते हैं अजामिल की भांति, वाल्मीकि की भांति, और सागर को अनायास ही तर जाते हैं। इसलिए व्यास जी ने उसको देखा, कैसे जन्म हुआ उनका, कैसे वो बड़े हुए, कैसे लोगों को घर में चोरी कर रहे हैं, मक्खन की चोरी नहीं, हृदय की दिल की चोरी करते हैं, कैसे ठुमक ठुमक करके चलते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं, उनका चलना मधुर, उनकी बोली मधुर, उनकी बंसी मधुर, उनका यह रूप मधुर, उनकी आंखें बड़ी मधुर, उनका देखना मधुर, उनका बोलना मधुर, सभी कुछ उनका, उनकी लीलाएं मधुर, उनकी मैया मधुर, उनकी शक्ति, ये गोपियां बड़ी मधुर, सभी कुछ मधुर। एक बार उनका दर्शन कर दिया वो भूलने का नहीं। इस तरह से उन्होंने देखा और उसका वर्णन किया, उसे वर्णन करने को कहते हैं श्रीमद्भागवतम। उनकी अंतिम ये पुस्तक है व्यास जी की। सब कुछ करने के बाद में अंत में उन्होंने जो रियलाइज किया अपनी समाधि में, समाधि मैंने किसको कहते हैं, समाधियां बहुत प्रकार की होती हैं। अभी कुछ लोग हठ योग से समाधि करते हैं, हठ योग से काम नहीं चलने का, हठ योग से काम नहीं चलेगा, हठ योग माने मैं ये संसार में मैं नहीं देखूंगा। अरे आंख तो भगवान ने दिया है, तू देखेगा क्यों नहीं, मन को एकाग्र कर लेगा। हवा को एकाग्र करना सहज है किंतु मन का एकाग्र करना सहज नहीं है। बैठो तो एक मिनट, मन एकाग्र होगा चारों तरफ की चिंताएं उसमें आएगी, एकाग्र नहीं हो सकता है। यदि भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है और सबसे फिर वही प्रीति रही, तब तो उसका चित्त एकाग्र हो जाएगा। कैसे चित्त एकाग्र होगा, भागवत उन्होंने दिया, प्राणी मात्र का धर्म भगवान से प्रेम करना है, वही सबके उद्गम स्थान है, वही सबके मित्र हैं, सखा हैं, प्रभु हैं, वही सबके प्राण प्रियतम है। और जगत में बदल जाएंगे हम, अभी मेरी बीवी है और मरने के बाद में वो किसकी बीवी रहेगी, अभी हमारे पति हैं और मर जाएंगे तब फिर किसके पति रहेंगे, ये बदलता रहता है। आज कोई स्त्री है, कल वो लड़का होगा, मरने के समय जैसी चिंताएं होंगी ठीक वैसा ही उसको जन्म लेना पड़ता है। और ये मत सोचो जैसे मैं चोरी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, दूसरे जन्म में इसी जन्म में उसको तुमको भोगना पड़ेगा। मांस माने क्या होता है, मांस माने किसी का गोश्त ना, किंतु संस्कृत में इसका माने है मांस, स मां खादति, जिसका मान समय मैं खा रहा हूं वो हमको खाएगा भाई, प्रतिक्रिया जरूर होगी। इसलिए झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सच बोलो, तमसामा ज्योतिर्गमय, संसार में मत अधिक प्रवेश करो। संसार में रहने के लिए बाल बच्चे ये सब जरूरी है, ये ठीक है, धन की भी जरूरत है, किंतु ये समझो ये प्रभु का है, हमारा नहीं, मैं उसका सेवक हूं, ऐसे समझो। स्त्री हमारी कृष्ण की दासी है, मैं उनका दास हूं, हमारे बच्चे भी उनके सेवक हैं, ऐसे समझो। सबसे प्रेम करो, प्रीति रखो, तब तो जीवन में सुखी रह सकते हो। इसलिए कोई पढ़ा लिखा हो न हो, कोई विद्वान हो चाहे न हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, हमारे भारतवर्ष में क्या बंगाली लोग, क्या गुजराती लोग, क्या तमिल तेलुगु वाले लोग, सभी लोग कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़मते, कौन कह रहा है, शंकर जी शंकराचार्य किसको कह रहे हैं, अपने बड़े बड़े विद्वानों को कह रहे हैं। अरे मूढ़, संस्कृत का ये पढ़ना लिखना वेदांत तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, जबिलत से भी मल्ली से गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते, नहीं नहीं रक्षते जो कृत करणे, संस्कृत का अनुस्वार विशार ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। ये धन हमारी रक्षा नहीं कर सकता, ये हमारे परिजन लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते, ये भगवान का नाम भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, ये समझो। इसलिए भक्ति जो का अवलंबन करो, उसमें कष्ट नहीं है। अरे एक बात कह रहे तो ये तो कह दो प्रभु मैं तेरा हूं तेरी हूं, कहने में क्या लगता है? कुछ भी पैसा नहीं लगता। अरे राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, इसमें पैसा लगता है? मैं बहुत बीमार हूं। अरे बीमार है तो क्या है, तुम बोलो तो, मुझे दवा ला दो, डॉक्टर बुला दो, ये कह सकता और हरे कृष्ण नहीं कह सकता, ये जो बड़ी दवा है भाई, हमको एकदम समय नहीं, अभी ऑफिस जाना है। ठीक है, अभी बीमार पड़ गया तो अभी जाएगा कि नहीं? अप्लीकेशन तुम्हारी आगे पहुंचेगी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते श्वास लेते समय भी, यहां तक कि स्नान नहीं किया, भोजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मर रहे हैं, टट्टी हुई हो रही है, तभी भगवान का नाम कहा राम राम कृष्ण कृष्ण कहा जा सकता है और भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। ये समस्त शास्त्र एक साथ में कहते हैं, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, भागवत में, गीता में, सर्वत्र ये बात है और अनुभव के आधार पर लिखा गया है। यदि हम न्यूटन की थ्योरी को मानते हैं, यदि हम मैक्स मुलर की बात मानते हैं, वर्ड वर्ष की हम बातें पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं हम व्यास की बातों को भी पढ़ करके और उसको रियलाइज करें? इन लोगों का वर्डली चीज है, सांसारिक बातें कहते हैं, परमार्थ की कोई बात नहीं, आत्मा की कोई बात नहीं, किंतु व्यास जी ने हमारे कल्याण के लिए ये सब चीजें अनुभव करके, तो कैसे भगवान में चित्त को लगाना चाहिए, कैसे लगेगा? संसार में हम फंसे हुए हैं, मन कैसे लगे? लगे इसी के लिए हम श्रीमद् भागवत से थोड़ा सा मैं बतलाना चाहता हूं। भाई बजा अभी आधा घंटा है, 35 मिनट हो गया,
40 मिनट।
अच्छा अब मैं बतलाता हूं कैसे भगवान का भजन सहज रूप में होता है। कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा और गोकुल में, दोनों में एक साथ में। इसके बाद में पुतना का वध किया। पुतना माने क्या? पूत माने अपवित्र, पवित्र, और पुतना माने जो पवित्र नहीं है। हम लोग स्नान करके पवित्र होते हैं ना, किसी के हाथ में कुछ गंदी चीज लग गई तो क्या करेंगे? अभी बाथरूम में जाकर के अच्छी तरह से साबुन लगा करके शुद्ध हो। कोई भी गंदी चीज लग गई से पानी से साफ कर लो, और यदि ये मैला हो गया तो हृदय पानी जाएगा कि नहीं, साफ करेगा कि नहीं? वो स्नान करने से नहीं होगा। एक आदमी कह रहा है कि मैं उसकी घर की सब कुछ चोरी कर लूंगा डकैती करके, ये जो बुरी चीज है, ये पानी से धोने से जाएगा, ये कैसे जाएगा? इसे विचार करने के लिए एक बार अमेरिका से ही एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारतवर्ष में गया था। ये भारत के बच्चे पुष्टिकारक भोजन के अभाव से वो मर जाते हैं, अंधे लंगड़े लूले हो जाते हैं, उनकी कैसे सहायता की जाए? उस डेलीगेशन में हमारे भारत के भी एक गुजराती सज्जन थे, बहुत विद्वान आदमी थे, वे गए थे। तो वो लोग डेलीगेशन दिल्ली में हुआ और जब मथुरा वृंदावन में लौटे तो न जाने कैसे एक वहीं के डॉक्टर के पास में ठहरे थे और डॉक्टर हमारे पास में उनको ले आए। तो बातचीत होने लगी तो उन्होंने ये कहा, आप लोग संत हैं, साधु हैं, यूर साधु, अच्छा ये आप लोग विचार नहीं करते, भारतवर्ष में लाखों बच्चे पुष्टिकारक भोजन के लिए मर जाते हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसके लिए आप लोगों ने नहीं सोचा? हमारे यहाँ बहुत इसका विचार होता है, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए पुष्टिकार आहार दिया जाता है। आपका भारतवर्ष बहुत गरीब आदमी है, बहुत से लोग बिना भोजन के मर जाते हैं, आप लोग इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? कई सौ रुपए इत्यादि ला करके या कुछ ऐसा कोई नियम बनाते, संस्था होती जो इन लोगों को सब किया जाता है। मैंने कहा जी ये तो बहुत आपने अच्छी बात कही, ठीक। या हम समझते हैं कि अमेरिका, रशिया और यूरोप के बड़े बड़े धनाढ्य देश के लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग संयुक्त राष्ट्र में भी यह विचार करके ये लोग कर रहे हैं, किंतु जरा ये आप लोगों ने सोचा कि क्राइम वहां पर क्यों बढ़ रहे हैं, क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं वहां पर क्यों भारत से अधिक होती है, क्यों लोग वहां के लोग 5-10 वर्षों में 5 बार शादी करते हैं, 5 बार छोड़ते हैं, ये क्यों? धन के लिए इतने लालायित रहते हैं कि दूसरे का मर्डर भी कर लेते हैं, कोई भी बात नहीं होती। आप लोगों ने उनके इन विचारों को परिवर्तन करने के लिए कुछ सोचा और प्लान बनाया? धन से तो बच्चों का ये पालन पोषण हो जाएगा, यह बात ठीक है, किंतु हमारे ऋषियों ने बहुत दूर की बात सोची। इनका हृदय कैसे परिवर्तन किया? चोरी करते हैं लोग, बेईमानी करते हैं, ये हृदय का मैल है, इसको पानी से नहीं धोया जा सकता है, ये कैसे होगा?